आगे सबक देखिए भाई। वमिन्हा मा वक़अ मुसन्नन अय अला सीगति तस्नियति व इल्लम यकुन लितस्नियति बल लितकरीरी व तकसीर वला बुद्द फी ततमीमी हादिहिल क़ाइदति मिन क़ैदिल इज़ाफति अय मुसन्नम मुज़ाफ़न इलल फ़ाइलि अविल मफ़ऊल لِئَلَّا يَرِدَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ أَيْ رَجْعًا مُكَرَّرًا كَثِيرًا। गुज़श्ता सबक में हम वो मकामात पढ़ रहे थे जहां मफूल मुतलक के हामिल फेल को हजफ करना वाजिब है भाई, और साहिब काफिया ने आपको बतलाया कि ये दो किस्म के मकामात हैं जिनके अंदर हजफ वाजिब है भाई। कुछ सिमाई हैं और कुछ कियासी हैं। सिमाई वो हैं जो सिमा पर मौकूफ हैं, यानी हम कोई ऐसा जाबिता नहीं बना सके। तो जब वो कियासी नहीं हैं, सिमाई हैं, तो आप उन पर कियास नहीं कर सकते। और कुछ जगहें वो हैं कियासी। उन कियासी जगहों में से पहली जगह इन्होंने बतलाई थी कि जहां पर मफूल मुतलक जो है वो उसके इस बात का इरादा किया जाए और वो नफी या माने नफी के बाद आए, और वो नफी या माने नफी ऐसे इसम पर दाखिल हो कि मफूल मुतलक का उससे खबर बनना सही न हो, इसलिए क्योंकि वो मंसूब है भाई। जैसे मा अंता इल्ला सैरन, आप नहीं हैं मगर चलते ही रहते भाई। तो यहां पर देखो ये सैरन जो है इसके इस बात का इरादा किया गया है, यानी आप चलते ही रहते हैं। और नीज ये हर्फ नफी या माने नफी के बाद वाक़े है, और वो नफी या माने नफी जो है वो अंता यानी इसम पर दाखिल है, और वो इसम ऐसा है कि आगे आने वाला मफूल मुतलक जो है इल्ला सैरन, इस सैरन का उससे खबर बनना सही नहीं है। और दूसरी जगह वो है कि जहां मफूल मुतलक मुकर्रर आए और एक ऐसे इसम के बाद आए कि जिससे उसका खबर बनना सही ना हो, तो इसके अंदर देखो नफी या माने नफी की कैद नहीं है। जैसे जैदुन सैरन सैरन, ये सैरन मुकर्रर आया है और एक इसम के बाद आया है और इसका उससे खबर बनना सही नहीं, इसलिए क्योंकि यह मंसूब है, जबकि खबर तो मरफू होती है। और फिर तीसरा तरीका हमने पढ़ा था कि जहां पर मफूल मुतलक माकबल में आने वाले जुमले के मजमून की जो गरज है और उसका जो मकसद है उसकी तफसील होकर वाके हो भाई, उसकी तफसील होकर वाके हो। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं फशुद्दुल वसाक, तो तुम बंद मजबूती से बांध लो, यानी जब कुफार से मुशरिकीन से जंग हो तो जो गिरफ्तार हो उनको मजबूती से बांध लो। फइम्मा मन्नम बाद व इम्मा फिदाअन, ये मजबूती से बांधना किस लिए है कि ताकि तुम बाद में या तो एहसान करते हुए वैसे ही उनको छोड़ दोगे तो उन लोगों पर तुम्हारा एहसान हो जाएगा, या तुम इन लोगों से फिदिया वसूल करके इनको छोड़ोगे तो तुम्हें माल हासिल हो जाएगा। तो यहां पर मन्नन और फिदाअन जो मफूल मुतलक आए उनके फेल को हजफ करना वाजिब है भाई, इसलिए क्योंकि ये माकबल में जो जुमला आया था फशुद्दुल वसाक, ये उसके मजमून की जो गरज है और जो मकसद है और जो फायदा है उसकी ये तफसील बयान कर रहे हैं भाई। और चौथा मकाम जहां मफूल मुतलक के हामिल फेल को हजफ करना वाजिब है, वो मकाम है जहां मफूल मुतलक तशबी के लिए आए और वो अफ़ाल जवारह में से हो, और इससे माकबल में एक ऐसा जुमला हो जो इस मफूल मुतलक के हम माना इसम पर भी मुश्तमिल हो और साहिब इसम पर भी मुश्तमिल हो। जैसे उसकी मिसाल आई थी मररतु बिही फइदा लहू सौतुन सौत हिमारिन, मैं उसके पास से गुजरा तो उसकी ऐसी ही आवाज थी जैसे गधे की आवाज। भाई जैसे गधे की आवाज ऊंची होती है और नागवार गुजरती है, इसी तरह मालूम हुआ वो भी या ऊंची आवाज से बोल रहा था या चीख रहा था चिल्ला रहा था। अब मकाम इस्तिशहाद है सौत हिमारिन, यह मफूल मुतलक है और इसके फेल को हजफ करना वाजिब है, इसलिए क्योंकि यह तशबीह के लिए आया है, उस शख्स की आवाज को गधे की आवाज के साथ तशबीह दी जा रही है। और नीज ये आवाज जो है ये अफाले जवारह में से है, ये आवाज का निकालना और चीखना और चिल्लाना और बोलना ये मुंह से होता है, तो ये अफाले जवारिह यानी जाहिरी आजा में से है। और नीज इससे माकबल में एक जुमला वाक़े है जिसके अंदर इसका हम माना इसम भी है यानी सौतुन, फईदा लहू सौतुन, देखो ये सौतुन उसी का हम माना है। और नी साहिब इसम भी है यानी जिसके लिए यह आवाज है, ऐ लहू सौतुन, तो ये जो लहू में हा जमीर आई ये है साहिब इसम जिसके लिए यह आवाज साबित की जा रही है। तो लिहाजा जिसके अंदर इन ये शर्तें पूरी न हुई, चाहे सारी शर्तें पूरी ना हो या इनमें से बास पूरी ना हो, तो फिर वहां पर उसको मफूल मुतलक नहीं बनाएंगे, बल्कि वो फिर बदल या खबर वगैरह वाके होंगे जिसकी मिसालें भी गुजर गई थी भाई। और फिर यहां पर साहिब काफिया ने दो मिसालें जिक्र की, फईदा लहू सौतुन सौत हिमारिन, और दूसरी मिसाल जिक्र की, व सुराखुन सुराख सकला ऐ मररतु बिही फईदा लहू सुराखुन सुराख सकला। मैंने बतलाया था सराखा यसरुखु के माने हैं चीखना, तो उसी से सुराख मस्तर है स्वाद के साथ है भाई सुराख। और असकला, सकला कहते हैं वो औरत जिसका बच्चा मर गया हो, मररतु बिही मैं उसके पास से गुजरा, फईदा लहू सुराखुन तो अचानक उसके लिए इसी तरह चीखना और चिल्लाना था, यानी वो इसी तरह चीख और चिल्ला रहा था जिस तरह वो औरत चीखती और चिल्लाती है जिसका बच्चा फौत हो गया हो, जिसके बच्चे का इंतकाल हो गया हो। अब सवाल पैदा होता है कि साहिब काफिया ने यहां दो मिसालें क्यों जिक्र की भाई, साहिब काफिया तो बात मुख्तसर करते हैं, तो वजह उसकी ये कि ये जो दूसरी मिसाल है सुराखुन ये मस्दर है, ये मस्दर है, जबकि पहली मिसाल जो आई फईदा लहू सौतुन सौत हिमारिन इसके बारे में बाज़ उलमा क्या फरमाते हैं ये इसमें मस्दर है। तो एक मिसाल मस्दर की जिक्र कर दी और एक इसमें मस्दर की, जबकि साहिबे जामी फरमाते हैं कि जो सौतुन आया ये भी मस्दर ही है और ये सात या सूतु सौतन से माखूज है। तो याद रखो सौत मस्दर भी है और मस्दर हो तो इसका माना है आवाज देना, देखो मस्दरी तर्जमा है, और सौत आवाज जो है उसको भी सौत कहते हैं यानी गैर मस्दर है भाई। तो फिर मैंने यहां तफसील बयान की थी कि मस्दर और इसमें मस्दर में क्या फर्क है, हमेशा याद रखना भाई, तुलबा परेशान होते हैं कि ये इसमें मस्दर क्या माना, तो मैंने बतलाया था भाई कि इसमें मस्दर वो है जो मस्दर ही का माना अदा करता है लेकिन इसके हुरूफ उस मस्दर से कम होते हैं। यूं कहें कि जो मस्दर होता है इसके हुरूफ अपने फेल के बराबर होते हैं या अपने फेल से ज्यादा होते हैं। जरबा यजरिबु जरबन, देखो जरबा फेल है तो मस्दर क्या है जरब, देखो दोनों में तीन तीन हुरूफ हैं। अकरामा फेल के अंदर चार हुरूफ हैं, इकराम मस्दर के अंदर पांच हुरूफ हैं, इस्तखराजा फेल के अंदर छह हुरूफ हैं, इस्तिखराज मस्दर के अंदर सात हुरूफ हैं भाई। तो आप गौर कर लेना मस्दर के अंदर अपने फेल के बराबर या अपने फेल से जायद हुरूफ होते हैं, जबकि इसमें मस्दर जो है इसके अंदर उस मस्दर से कम हुरूफ होते हैं, या यूं कहें इसके अंदर अपने फेल से कम हुरूफ होते हैं। इसमें मस्दर के अंदर अपने फेल से कह लें या अपने मस्दर से कह लें इनसे हुरूफ कम होते हैं, जैसे मैंने कई मिसालें लिखवाई भाई, जैसे इग्तसला यग्तसिलु इग्तिसालन, इग्तसला से मस्दर क्या आता है इग्तिसाल, और देखो इग्तसला इसके अंदर पांच हुरूफ हैं, इग्तिसाल मस्दर में छह हुरूफ हैं, जबकि इसमें मस्दर जो आता है इसी से वो है गुस्ल भाई और उसके अंदर सिर्फ तीन हुरूफ हैं। तो इग्तिसाल और गुस्ल का एक माना है। इसी तरह आता युअती से मस्तर आता है इअता भाई, तो इअता के अंदर कितने हुरूफ हैं, इअता के अंदर पांच हुरूफ हैं, पांच हुरूफ हैं और इसी से इसमें मस्तर आता है अता भाई। इसी तरह जक्का युजक्की तजकियतन, तजकिया ये मस्तर है जबकि इसी से इसमें मस्तर आता है जकात भाई। इसी तरह सल्ला युसल्ली तस्लियतन, इसी से इसमें मस्तर है सलात भाई। तो इसमें मस्दर के अंदर अपने फेल से कम हरूफ होते हैं, बाकी माना भी वही होता है और अमल भी ये उसी तरह करता है। जिस तरह मस्दर अपने फाइल को रफा और अपने मफूल को नसब देता है, इसी तरह इसमें मस्दर भी अमल करता है। तो ये फायदा हमेशा याद रखना, भाई तुलबा अमूमन इसमें परेशान होते हैं। और फिर अगली जगह हमने पढ़ी थी कि वो मफूल मुतलक जिनके फेल को हजफ करना वाजिब है, उनमें से एक वो मफूल मुतलक है जो मजमून जुमला वाके हो, तो वह जो है मजमून जुमला वाके हो। और फिर उसमें दो किस्में हैं, एक वो मफूल मुतलक जो मजमून जुमला वाके हो रहा है और उस जुमले के अंदर और कोई एहतमाल नहीं, इस मफूल मुतलक के अलावा और कोई एहतमाल नहीं। और दूसरी सूरत यह है कि मफूल मुतलक मजमून जुमला वाके हो रहा है और उस जुमले के अंदर इस मफूल मुतलक के अलावा और भी एहतमाल हैं। भाई बात समझ में आ गई, जैसे लहू अलैया अल्फु दिरहमिन इअतराफन, ये लहू अलैया अल्फु दिरहमिन, इससे भी क्या पता चला, इअतराफ का। तवज्जो है, मजमून जुमला क्या है, इअतराफ। मैंने आपको बतलाया था कि यहां जो लफ्ज आया ना मजमून जुमला, इससे वो मजमून जुमला नहीं मुराद जो पीछे जिक्र हुआ था कि मस्दर की इजाफत कर दी जाए फाइल या मफूल की तरफ, वो मजमून जुमला मुराद नहीं, बल्कि यहां मजमून जुमला से मुराद है हासिल कलाम, हासिल जुमला। तो यहां पर भी जब कोई शख्स ये कहे लहू अलैया अल्फु दिरहमिन, तो ये दरअसल क्या कर रहा है, एतराफ कर रहा है। तो आगे मफूल मुतलक भी क्या आया, एतराफ। तो जुमले से जो मालूम जो तो जुमले से भी क्या समझ में आया, एतराफ, और आगे मफूल मुतलक भी क्या आया, एतराफ। तो ये जो एतराफ है ये मफूल मुतलक जो है ये मजमून जुमला होकर वाके हो रहा है और इस जुमले के अंदर इस एतराफ के अलावा और कोई एहतमाल भी नहीं। तो इसका क्या नाम है, ताकीद ली नफसी ही, ताकीद, यानी ये अपनी ही जात की ताकीद कर रहा है। जुमले से भी क्या समझ में आया, एतराफ, आगे लफ्ज भी क्या आया, एतराफ, तो ये अपनी ही जात की ताकीद कर रहा है। यानी यूं कहो जुमले से जो समझ में आया वो है मुअक्कद, और आगे दोबारा जब लफ्ज लाया गया तो इसको क्या कहते हैं, ताकीद। तो जुमले से समझ में आया जो मुअक्कद वो भी है एतराफ, आगे जो मुअक्किद यानी ताकीद आई वो भी है एतराफ। तो मुअक्कद और मुअक्किद में कोई फर्क नहीं, एतबारी फर्क भी नहीं है। तो ये ताकीद ली नफसी ही है कि ये एतराफ अपनी ही ताकीद कर रहा है, किसी मुगायर चीज की ताकीद नहीं कर रहा, चाहे वो मुगायर एतबारी तौर पर ही क्यों ना हो, ऐसा भी यहां नहीं है। यानी किसी मुगायर की ताकीद नहीं कर रहा, चाहे वो मुगायर एतबारी ही क्यों ना हो, ऐसा भी यहां नहीं है। भाई जबकि दूसरी मिसाल हमने की थी जैदुन कायमुन हक्कन, इसके अंदर देखो जैदुन कायमुन ये जुमला आया और इसके बाद हक्कन ये मफूल मुतलक आया और ये मजमून जुमला है, क्योंकि माकबल का जो जुमला है उसमें हक होने का भी एहतमाल और बातिल होने का भी एहतमाल, ये यूं कहो उसमें सच होने का भी एहतमाल और झूठ होने का भी एहतमाल। तो आगे हक्कन आया, इसने जुमले के अंदर जो हक होने का एहतमाल था उसको पक्का कर दिया। तो जुमले के अंदर भी एहतमाल था, यानी जुमला भी मुहतमल था, हक्कन का भी और बातिलन का भी। तो बहरहाल जुमले में मुहतमल तो है हक्कन और आगे भी हक्कन आया, और यह हक्कन मंसूसल है, यानी इस पर तसरी की गई है, लफ्जों में इसको जिक्र किया गया है। एक हक्कन जुमले से समझ में आया वह मंसूसल नहीं, जुमले के अंदर कहीं हक्कन का लफ्ज था नहीं, लेकिन आगे जो हक्कन आया वो तो मंसूस अलह है, लफ्जों के अंदर खुद यही लफ्ज आ गया। तो एक हक्कन कहां से समझ में आ रहा है, जुमले से, वो मंसूस अलह नहीं, वहां पर हक्कन का लफ्ज नहीं, हां वो मुहतमल है, यानी जुमले के अंदर उसका एहतमाल है। और अगला जो हक्कन जो मफूल मुतलक आया वो तो मंसूस अलह है, खुद लफ्जों के अंदर हक्कन आ गया। तो जुमले से भी क्या समझ में आया, हक्कन, और आगे लफ्जों में भी क्या आया, हक्कन। तो ये ताकीद कर रहा है, याद रखो ताकीद हमेशा अपनी ही की जाती है, गैर की ताकीद नहीं की जाती, क्योंकि ताकीद का क्या माना है कि एक चीज को दो बार जिक्र किया जाए जिससे वो चीज पक्की हो जाए, पुख्ता हो जाए। पहले एक चीज जिक्र है और दोबारा जिक्र होगी तो वो पहली चीज को पक्का करेगी और पुख्ता करेगी, अगर पहली चीज कोई और है और दूसरी कोई और है तो फिर तो वहां ताकीद ही नहीं है। ताकीद तो किसे कहते हैं, एक चीज को दो दफा जिक्र किया जाए, जानी जैदुन जैदुन, ये जैद सानी क्या कर रहा है, पहले जैद की, पहले जैद की ताकीद है, ये उसको पक्का कर रहा है। तो ताकीद के लिए क्या जरूरी कि एक चीज को दो दफा जिक्र किया जाए, बात समझ में आ गई, उसके बगैर वो ताकीद कहलाएगी नहीं भाई। लिहाजा जुमले से भी क्या समझ में आया, हक्कन, और आगे ताकीद भी क्या आई, हक्कन। तो ये अपनी ही ताकीद कर रहा है, ये आप ना कहें कि ये किसी और चीज की ताकीद कर रहा है, बल्कि मैंने बताया ताकीद अपनी ही की होती है, किसी और चीज की नहीं। हां, इसका नाम अलग रखा है ताकीदन लिगैरी ही, क्योंकि ये अगरचे अपनी ताकीद कर रहा है लेकिन मुअक्कद और मुअक्किद में फर्क है भाई, एतबारी फर्क है। एतबारी फर्क मैंने बताया था, एतबारी वो चीज होती है जो मुअतबिर के एतबार पर मौकूफ हो, मुअतबिर उसका एतबार करता है तो वो फर्क है, मुअतबिर एतबार नहीं करता तो वो फर्क भी नहीं है। तो यहां दोनों में एतबारी फर्क है, क्योंकि जुमले से जो हक्कन समझ में आया था वो मुहतमल था, यानी मंसूस अलैह नहीं था, और जो बाद में हक्कन लफ्ज आया वो तो मंसूस अलैह है, लफ्ज है भाई। तो वो जो जुमले से समझ में आया वो है मुहतमल, और जो बाद में हक्कन है वो है मंसूस अलैह। तो बई एतबार ये दोनों गैर हैं एक दूसरे से, एक सिर्फ एक मुहतमल है और एक मंसूस अलैह है। तो ये जो हक्कन मंसूस अलैह आया, इसने किस हक्कन की ताकीद की, वो जो हक्कन मुहतमल था, तो वो तो इसने अपनी ही ताकीद की या गैर की ताकीद की, गैब, यानी इस एतबार से, इस एतबार से दोनों में फर्क है। तो इसने अपनी ताकीद नहीं की, अपनी ताकीद तो तब होती अगर माकबल वाला भी हक्कन भी मंसूस अलैह होता और ये भी क्या होता, मंसूस अलैह, फिर हम कहते ये अपनी ताकीद कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो अव्वल मुहतमल है और सानी मंसूस अलैह है, तो बई एतबार दोनों में फर्क है। तो गोया यूं कहेंगे ये जो हक्कन आया, जैदुन काइमुन हक्कन, ये जो हक्कन लफ्ज आया ये ताकीद लिगैरी ही है, ये गैर की ताकीद कर रहा है, अपनी ताकीद नहीं। गैर क्यों है, क्योंकि जिसकी ताकीद कर रहा है वो तो मंसूस अलैह नहीं, वो तो मुहतमल है, तो वो यही हुआ या इसे गैर हुआ, ये गैर, तो ये गैर की ताकीद कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये वो सूरत है जबकि दोनों जगह जो लाम आया है उसको सिला बनाए, ताकीदन लिनफ्सी ही, ऐसी ताकीद जो अपनी जात के लिए हो, और ताकीदन लिगैरी ही, ऐसी ताकीद जो गैर के लिए हो, यानी गैर की ताकीद हो। तो इस सूरत में लाम को सिला बनाया था, और साहिब जामी ने बतलाया था कि आप चाहें तो इस लाम को अजलिया बना लें, लाम को अजलिया बना लें, इल्लत के लिए बना लें कि ताकीदन लिगैरी ही, कि ये जो हक्कन है ये ताकीद है लिगैरी ही, गैर की वजह से। पहले तर्जमा क्या था, ताकीदन लिगैरी ही, ये गैर की ताकीद है। अब तर्जमा क्या है, ताकीदन लिगैरी ही, अब लाम को अजलिया बनाओ, तर्जमा क्या होगा, ताकीद है गैर की वजह से। किसकी वजह से, गैर की वजह से। क्या माना गैर की वजह से, भाई उस जुमले के अंदर दोनों इहतमाल थे, हक होने का भी और बातिल होने का भी, तो ये हक्कन ताकीद लाई गई उस गैर की वजह से, यानी उस बातिल के इहतमाल की वजह से, ताकि वो इहतमाल दफा हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये हक्कन ताकीद क्यों लाई गई, गैर की वजह से। वो गैर कौन है, वो जो बातिलन का इहतमाल था जुमले के अंदर, तो उस बातिलन इहतमाल होने, उसमें चूंकि बातिलन का भी इहतमाल था, तो ये हक्कन ताकीद लाई गई उस गैर यानी बातिलन की वजह से, ताकि वो इहतमाल जुमले से खत्म हो जाए। और फिर साहिब जामी ने कहा कि अगर यहां पर लाम को अजलिया बनाओ तो फिर ताकीदन लिनफ्सी ही के अंदर भी लाम को अजलिया बनाना चाहिए भाई, लाम को अजलिया बनाना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले में हैं। वहां पर ताकीद लिनफ्सी ही है तो यहां ताकीद लिगैरी ही है, तो यहां पर ये दोनों मफूल मुतलक एक दूसरे के मुकाबिल हैं भाई। वो जो मजमून जुमला तो वाकई हो रहा है लेकिन या वो ताकीद लिनफ्सी ही होगा या ताकीद लिगैरी ही होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हैं। जब एक दूसरे के मुकाबिल हैं तो जब एक जगह के अंदर आपने लाम सिले के लिए बनाया है तो दूसरी जगह भी सिले के लिए बनाओ, फिर ही मुकाबला वाजे होगा और अच्छा नजर आएगा। और अगर एक के अंदर आपने लाम को अजलिया बनाया है तो दूसरे के अंदर भी लाम को अजलिया बनाओ भाई, इसी सूरत में मुकाबला नजर आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हैं भाई। तो लिहाजा वहां पर फिर क्या माना होगा, ताकीदन लिनफ्सी ही, ऐ ताकीदन ली अजली नफसी ही, यानी ताकीद है अपनी जात की वजह से। भाई अपनी जात की वजह से ताकीद क्या माना? भाई अपनी जात की वजह से ताकीद का माना यह है कि अपनी जात की वजह से ताकीद लाई गई ताकि इसमें तकरार आ जाए, और जब तकरार आएगा तो यह पक्का हो जाएगा। लहू अलैया अल्फु दिरहमिन, इससे भी क्या समझ में आया? एतराफ। तो आगे एतराफ लाए अपनी ही जात की वजह से कि एक दफा आ चुका है ताकि ये दोबारा भी आ जाए, और जब दोबारा आ जाएगा तो ये पक्का हो जाएगा। तो यहां अपनी जात की वजह से ताकीद लाई गई है ताकि इसमें तकरार आ जाए, और जब तकरार आएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? पुख्ता। बल्कि यूं कहो, ये ताकीद अपनी जात की वजह से लाई गई है ताकि ये पक्का हो जाए, ताकि ये, और वहां पर ताकीद गैर की वजह से लाई गई है ताकि वो गैर दफा हो जाए, वो दूर हो जाए। फर्क समझ में आया? तो एक में ताकीद है गैर की वजह से ताकि वो गैर दूर हो जाए, यानी बातिल होने का एहतमाल खत्म हो जाए, और पहले के अंदर ताकीद लाई गई है अपनी जात की वजह से कि ताकि ये पक्का हो जाए। एक दफा तो आ चुका है, लेकिन पक्का तो कब होगा? जब दो दफा लाएंगे तो दूसरी दफा भी लाया गया अपनी जात की वजह से कि यह खुद क्या हो जाए? पक्का हो जाए। आगे देखिए भाई आज का सबक कहते हैं, व मिन्हा मा वका मुसन्नन अय अला सीगति तस्नियति व इल्लम यकुन लितस्निया। जी, सातवीं किस्म आ गई वो मफूल मुतलक, जहां पर उसके फेल को हजफ करना वाजिब है। तो आपको बतलाएंगे साहिब काफिया के वो जगह है जहां मफूल मुतलक तस्निया वाके हो। मतन मतन पहले देखें, कहते हैं व मिन्हा मा वका मुसन्नन, और उनमें से एक मकाम वो है जहां पर मफूल मुतलक तस्निया वाके हो। मिसलु लब्बैका, जैसे कि लब्बैका व सादैक, लब्बैक और सादैक। तो उन जगहों में से एक वो जगह है जहां मफूल मुतलक तस्निया वाके हो। साहिब जामी आपको बतलाएंगे कि यह जाब्ता पूरा जिक्र नहीं किया साहिब काफिया ने, बस सिर्फ इतना कह दिया कि मफूल मुतलक तस्निया हो। हालांकि याद रखना, मफूल मुतलक जो है जब भी तस्निया आए तो उसके फेल को हजफ करना वाजिब नहीं है, बल्कि उसमें देखेंगे कि तस्निया बोलकर तस्निया का इरादा है या कसरत का इरादा है। अगर तस्निया बोलकर तस्निया ही का इरादा है तो फिर आमिल को हजफ करना वाजिब नहीं है। जरब तो जरबाइनी, मैंने दो जरबें लगाई, देखा यहां जरबाइनी मफूल मुतलक है, तस्निया है, और इसके फेल जरब को जिक्र किया गया है। तो जब भी तस्निया आए मफूल मुतलक, उसके फेल को हजफ करना वाजिब नहीं। हां, याद रखना, बाज औकात अरबी जुबान के अंदर मफूल मुतलक को तस्निया जिक्र किया जाता है, और वहां तस्निया मुराद नहीं होता बल्कि कसरत मुराद होती है, कसरत मुराद होती है। तो जब कसरत का इरादा हो, मफूल मुतलक जिक्र किया जाए तस्निया, और इरादा किसका है? कसरत का है, तो फिर उसके अंदर देखेंगे कि यह मफूल मुतलक ये अपने फाइल या मफूल की तरफ मुजाफ है या मुजाफ नहीं। अगर अपने फाइल की तरफ या मफूल की तरफ यह मुजाफ हो, फिर इसके आमिल को हजफ करना वाजिब है, और अगर यह अपने फाइल या मफूल की तरफ मुजाफ न हो, फिर इसके आमिल को हजफ करना वाजिब नहीं। हासिल कलाम क्या? कि मफूल मुतलक या तस्निया के लिए आएगा या कसरत के लिए। अगर तस्निया के लिए आए तो इसके फेल को हजफ करना वाजिब नहीं, अगर कसरत के लिए आए फिर उसमें देखेंगे कि यह मफूल मुतलक अपने फाइल या मफूल की तरफ मुजाफ हो रहा है या मुजाफ नहीं हो रहा। अगर मुजाफ हो रहा है तो फिर तो इसके आमिल को हजफ करना वाजिब, और अगर मुजाफ नहीं हो रहा है कसरत के लिए ही लेकिन अपने फाइल या मफूल की तरह मुजाफ नहीं हो रहा, तो फिर इसके फेल को हजफ करना वाजिब नहीं। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सुमर्जिल बसरा कर्रतैन, सुमर्जिल बसरा कर्रतैन, के फिर आप लौटा लीजिए अपनी निगाह को कर्रतैन। तो यहां कर्रतैन आया, मफूल मुतलक आया और तस्निया आया, लेकिन ये यहां तस्निया के लिए नहीं है बल्कि कसरत बतलाने के लिए है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इस आसमान पर निगाह डाल लीजिए, आप हमारी तखलीकात पर निगाह डाल लीजिए, आपको हमारी पैदा की हुई चीजों में, हमारी बनाई हुई चीजों में आपको कोई ऐब नजर नहीं आएगा। तो यहां कर्रतैन से यह मुराद नहीं है कि दो मरतबा निगाह डाल लीजिए, बल्कि यहां यह कसरत के लिए है, यानी कसरत से निगाह डाल लीजिए, बार बार निगाह डाल लीजिए, आपको हमारी बनाई हुई चीजों के अंदर कभी कोई ऐब दिखाई नहीं देगा। भाई तो अब देखो कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, सुमर्जिल बसरा कर्रतैन, यहां कर रतैन मफूले मुतलक आया, तस्निया आया भाई, और ये कसरत के लिए है। अगर मफूले मुतलक तस्निया लाएं और तस्निया का ही इरादा करें तो भी फेल का हजफ वाजिब नहीं, और अगर मफूले मुतलक तस्निया लाएं और इरादा किसका हो, कसरत का हो, फिर हजफ कब वाजिब है? अगर उसकी इजाफत हो जाए अपने फाइल या मफूल की तरफ, और यहां कर रतैन के आगे कोई इजाफत नहीं हो रही कि आगे उसकी इजाफत हो किसकी तरफ, फाइल या मफूल की तरफ, इसीलिए इसका फेल इरजिअ देखो जिक्र है, सुमरजिअल बसरा कर रतैन, तो ये इरजिअ फेल यहां जिक्र है, हजफ वाजिब नहीं क्योंकि ये अपने फाइल या मफूल की तरफ मुजाफ नहीं। और हां अपने फाइल या मफूल की तरफ मुजाफ हो, तस्निया है और अपने फाइल या मफूल की तरह मुजाफ है, फिर हजफ वाजिब है। जैसे लब्बैक, देखो हाजी तलबिया पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आज आपको साहिब काफिया ने बतला दिया कि ये जो लब्बैक है ये दर असल मफूल मुतलक है और ये तस्निया है, तस्निया है, असल में क्या है लब्बैनी, लब्बैनी हालत नस्बी में, और फिर इसकी इजाफत कर दी गई काफ जमीर की तरफ तो वो नून इजाफत की वजह से गिर गया तो क्या बन गया लबैक भाई। बात समझ में आ गई? आपको साहिब जामी बताएंगे कि असल इबारत ये है उलिबुलका इलबाबैनी, असल में ये क्या था उलिबुलका इलबाबैनी, अलब्बा युलिबु इलबाब के माना है खिदमत के लिए हाजिर रहना, अलब्बा युलिबु इलबाब का क्या माना है खिदमत के लिए, फरमाबरदारी के लिए और इताअत के लिए हाजिर रहना। तो हाजी भी वहां पर कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं आपकी इबादत के लिए हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं ताकि आपके अहकामात पर अमल करूं और मुसलसल उन पर अमल करता रहूं। तो देखो लब्बैक का क्या माना, ए अल्लाह मैं बार बार आपकी खिदमत और इबादत के लिए हाजिर हूं। देखो कितना लंबा कलाम है और मुख्तसर लफ्जों के अंदर समो दिया गया, लब्बैक का यह माना है। बात समझ में आ गई कि अल्लाह मैं बार बार हाजिर हूं, मुसलसल हाजिर हूं आपकी खिदमत और आपकी इबादत और आपके अहकाम पर अमल करने के लिए। बात समझ में आ गई? तो ये लब्बैक क्या है, देखो मफूल मुतलक है, तस्निया है और मुजाफ हो रहा है किसकी तरफ, मफूल की तरफ, तो इसके फेल को हजफ करना वाजिब है भाई। और साहिब जामी आपको बतलाएंगे कि तकदीर इबारत है उलिबु लका इलबाबैनी, उलिबु लका मैं हाजिर हूं, लका आपके लिए, इलबाबैन बार बार हाजिर होना, देखो तस्निया आ रहा है कसरत के लिए, कसरत के साथ हाजिर हूं। फिर उसके बाद क्या किया गया, उलिबु फेल को हजफ कर लिया गया, बाकी क्या रह गया लका इलबाबैन, लका इलबाबैनी। फिर ये इलबाबैन, ये इलबाब, ये सुलासी मजीद फी से है और इसका मादा क्या है लब्बुन, तो इलबाब के अंदर शुरू का हमजा भी जायद और दरमियान में अलिफ भी जायद है। फिर इस इलबाबैन के अंदर जो जवायद थे उनको हजफ कर दिया गया और इसको सुलासी मुजर्रद की तरफ लौटा दिया गया, तो इलबाबैन से क्या बन गया लब्बैनी, शुरू का हमजा भी गिराया और दरमियान से अलिफ भी गिरा दिया, तो लका लब्बैनी ये रह गया भाई, लका लब्बैनी। फिर इसके अंदर ये लाम जार्रा को हजफ किया गया और ये काफ जो मफूल था इसकी तरफ लब्बैन की इजाफत कर दी गई और नून फिर इजाफत से गिर गया तो क्या रह गया लब्बैक। बात समझ में आ गई? तो तकदीर इबारत क्या है उलिबु लका इलबाबैनी, तरीका समझ में आ गया। और यह भी एहतमाल जिक्र करेंगे कि हो सकता है यह लब्बा बिल मकान से माखूस हो, उलिब्बू से ना माखूस हो, सुलासी मजीद से ना हो बल्कि यह सुलासी मुजर्रद से ही हो। लब्बा या लुब्बू बिल मकान के माने होते हैं किसी जगह ठहरना जमना, तो यहां पर भी देखो इसके अंदर भी क्या जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह मैं आपकी इबादत के लिए अपनी जगह पर जमा हुआ हूं, यानी मुसलसल आपकी इबादत के लिए आपकी खिदमत के लिए मैं हाजिर हूं भाई, तो ये लब्बा बिल मकान से भी माखूज हो सकता है। तो फिर इस सूरत में हज़्फ़े ज़वाइद की हाजत ही नहीं, बाबे इफ़ाल से बनाते तो फिर तो उसमें ज़वाइद थे, और अगर सुलासी मुजर्रद से ही इसको बना लें लब्बा बिल मकान के फेल से इसको बना लिया जाए तो फिर तो हज़्फ़े ज़वाइद की कोई हाजत ही नहीं है। बात समझ में आ गई? देखिए भाई किताब पर कहते हैं वह मिनहा मा वका मुसन्नन, और उन जगहों में से एक वो जगह है जहां मफूले मुतलक तस्निया होकर वाके हो। ای علی صیغتی تسنیتی یعنی تسنیہ کے صیغے پر ہو، وَإِلَّمْ يَكُنْ لِلتَّسْنِيَةِ بَلْ لِلتَّقْرِيرِ وَالتَّكْسِيرِ، اگرچہ وہ تسنیہ کے لیے نہ ہو بلکہ تکرار اور تکسیر کے لیے ہو. مفعول مطلق آئے گا تو تسنیہ، صیغہ تسنیہ کا ہوگا لیکن تسنیہ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ تکرار اور تکسیر کے لیے. جیسے یعنی میں بار بار اے اللہ حاضر ہوں اور کثرت کے ساتھ میں حاضر ہوں. وَلَا بُدَّ فِي تَتْمِيمِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، میں نے آپ کو بتلایا تھا صاحب کافیہ نے صرف کیا ذکر کیا کہ اس کے اندر مفعول مطلق تسنیہ واقع ہو، اور حالانکہ ایک اور قید بھی ضروری تھی کہ اس کی اضافت ہو اپنے فاعل یا مفعول کی طرف، اس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا. تو اب صاحب جامع اس کو ذکر کریں گے کہ اس قاعدے کی تکمیل ہوگی جب اس میں یہ بھی ذکر کر دیا جائے، اس کے بغیر یہ قاعدہ پورا نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ فِي تَتْمِيمِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ قَيْدِ الْإِضَافَةِ، اور ضروری ہے فِي تَتْمِيمِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، تَتْمِيم کا معنی ہے تکمیل بھئی، پورا کرنا، اور ضروری ہے اس قاعدے کی تکمیل میں یعنی اس کو پورا کرنے کے لیے، مِنْ قَيْدِ الْإِضَافَةِ، اضافت کی قید، اس میں اضافت کی قید ضروری ہے کہ مفعول مطلق تسنیہ بھی ہو اور اپنے فاعل یا مفعول کی طرف اس کی اضافت بھی ہو. اے مصنم مضافن الى الفاعل او المفعول، یعنی تسنیہ ہو جو کہ مضاف ہو رہا ہو، الى الفاعل او المفعول، فاعل یا مفعول کی طرف، لئلا يرد مثل قوله تعالی، تاکہ کہیں اعتراض وارد نہ ہو اللہ تعالی کے اس جیسے قول کے ذریعے. ثم ارجع البصر کرتین اے رجع مکررا کثیرا، دیکھو کررتین تسنیہ آیا تھا لیکن صاحب جامی اس کا معنی بیان کر رہے ہیں، اے رجع مکررا کثیرا، رجعا لوٹنا، دیکھو اسی ارجع سے رجعا مفعول مطلق بنا لیا، اور مکررا یعنی جس میں تکرار ہو، کثیرا جس کے اندر کثرت ہو، یعنی آپ بار بار کثرت کے ساتھ اپنی نگاہ ڈال لیجئے. وفی جعل المثال من تتمت التعریف لافادت هذا القید تکلف، بھئی بعض شارحین نے اور جواب دیا. صاحب جامی نے تو کیا کہا کہ صاحب کافیہ نے یہ ضابطہ پورا نہیں ذکر کیا، اس میں ایک اور قید بھی ہونی چاہیے کہ یہ مفعول مطلق جو تسنیہ واقع ہوا ہے اس کی اضافت بھی ہو رہی ہو اپنے فاعل یا مفعول کی طرف. بعض شارحین نے اور جواب دیا، انہوں نے کہا کہ کوئی قید لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آگے جو صاحب کافیہ نے مثالیں ذکر کی مثل لبیک و سعدیک، یہ بھی اس ضابطے کے ساتھ ہی جوڑ دیں، اس کو مثال نہ بنائیں، اس کو ضابطے کا حصہ بنا دیں. مثال تو ہوتی ہے نا ضابطے کی وضاحت کے لیے، پہلے ایک ضابطہ پورا ذکر کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کی جاتی ہے. لیکن بعض شارحین نے جواب یہ دیا کہ مثال کو الگ نہ کریں ضابطے سے، مثال کو ہی ضابطے کا تتمہ بنا دیں، مثال کو ہی ضابطے کا تتمہ بنا دیں، ضابطے کا آخری حصہ بنا دیں، اس کو ضابطے کے ساتھ جوڑ دیں. تو جب مثال کو آپ جوڑ دیں گے تو مثال کے اندر تو اضافت ہو رہی ہے، لبیک اور سعدیک دونوں کے اندر اضافت ہو رہی ہے، تو اس مثال سے آدھی بات سمجھ میں آ رہی تھی، اس لیے صاحب کافیہ نے باقی بات کو لفظوں کے اندر ذکر نہیں کیا. کیا کہا؟ اب جوڑو ذرا مثال کو. ومنہا ما وقع مسنن، اور ان جگہوں میں سے ایک وہ جگہ ہے جہاں مفعول مطلق تسنیہ واقع ہو، مثل لبیک و سعدیک، جیسے کہ لبیک اور سعدیک واقع ہو رہے ہیں اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو کر. دیکھو اب بات پوری ہو گئی، تو اس مثال کو کیا کریں؟ ضابطے ہی کا حصہ بنا دیں. تو صاحب جامی کہیں گے نہیں بھائی، مثال کو ضابطے کا حصہ بنانا اس میں تکلف ہے. تکلف کسے کہتے ہیں؟ بات کو بنانا، بناوٹی بات، یعنی اس میں تکلف کرنا پڑے گا، ایک بات بنانی پڑے گی، بن نہیں رہی لیکن بنانی پڑے گی کہ اس کو ضابطے کا حصہ بنانا پڑے گا. حالانکہ ضابطہ تو ہمیشہ الگ ذکر ہوتا ہے اور پھر مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کی جاتی ہے، نہ یہ کہ مثال کو ہی اس ضابطے کا حصہ بنا دیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وفی جعل المثال من تتمت التعریف، اور بنانا مثال کو تعریف کے تتمے میں سے، لافادت هذا القید، تاکہ یہ مثال فائدہ دے اس قید کا. और इस मिसाल को इस तारीफ का ततीमा बनाना, यह ततीमा जिस पर किसी चीज की तकमील हो रही हो, इस मिसाल को तारीफ का ततीमा बनाना लिफादती हाद अल कैदी, ताकि यह फायदा दे इस कैद का, तकल्लुफुन, ये तकल्लुफ है भाई, इसके अंदर तकल्लुफ है। तो बहरहाल अपना अपना तरीका है, दोनों तरीकों से जवाब हो सकता है। साहिब जामी को वो बात पसंद थी कि ये कैद बाकायदा लफ्जों में जिक्र होनी चाहिए, जबकि बाजों ने क्या जवाब दे दिया कि लफ्जों में जिक्र की हाजत ही नहीं, वही मिसाल को ही जाब्ते का हिस्सा बना दो, पूरी बात समझ में आ जाती है। तो कहते हैं मिसलु लब्बई का असलुहु उलिब्बु लका इल्बाबैनी, इसकी असल क्या है, उलिब्बु लका इल्बाबैन, अलब्बई उलिब्बु का क्या माना, खिदमत में हाजिर होना, आई उकीमु लिखिदमती कवम्तिसाली अमरी कवला अबरहु अन मकानी इकामतन कसीरतन मुततालियतन, आई उकीमु लिखिदमती का, ए अल्लाह मैं आपकी खिदमत के लिए खड़ा हूं, वम्तिसाली अमरी का, इम्तिसाल कहते हैं हुक्म पर अमल करना, वम्तिसाली अमरीका, और आपके हुक्म पर अमल करने के लिए, आपके हुक्म की ताबेदारी करने के लिए, वला अब्रहु अन मकानी, और मैं नहीं हटूंगा अपनी जगह से, यानी जमा रहूंगा मुसलसल आपकी खिदमत में और आपकी इबादत के लिए हाजिर रहूंगा, इकामतन कसीरतन मुततालियतन। देखा ये अब वो माना बयान कर रहे हैं, मफूल मुतलक तस्निया आया था ना, तो यहां पर कौन सा फेल जिक्र है, उकीम, तो यहां पर इकामतन मफूल मुतलक ले आए, कायम होना, कसीरतन कसरत के साथ, मुततालियतन मुसलसल बार बार भाई। तो अब देखो तर्जमा किस तरह करेंगे, ये इकामतन कसीरतन मुततालियतन ये मफूल मुतलक हैं भाई, और मैंने आपको बतलाया था मफूल मुतलक का अलग तर्जमा नहीं करते, जरबतु जरबन, तुलबा इसका तर्जमा उमूमन क्या करते हैं, जरबतु मैंने मारा, जरबन मारना, मैंने मारा मारना, भाई मफूले मुतलक का अलग तर्जमा नहीं करते, उसको उसी जुमले के अंदर उसी फेल के साथ ले जाते हैं। जैसे मसन मैं कहता हूं जरबतु जरबन शदीदन, तो तुलबा उमूमन क्या तर्जमा करते हैं, जरबतु मैंने मारा, जरबन शदीदन सख्त मारना, नहीं भाई मफूले मुतलक को उसी फेल के साथ जोड़ दो, जरबतु जरबन शदीदन क्या तर्जमा होगा, मैंने सख्त पिटाई की या मैंने शिद्दत के साथ मारा। तो यहां पर भी ये इकामतन कसीरतन मुततालियतन, इस सारे को ले जाएं और उकीमु लिखिदमती का वहां पर जोड़ दें। अब सुनो तर्जमा, आई उकीमु लिखिदमती का यानी ए अल्लाह मैं कसरत के साथ बार बार आपकी खिदमत के लिए खड़ा हूं, वम्तिसाली अमरीका और आपके हुक्म की तामील करने के लिए, वला अब्रहु अन मकानी और मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगा यानी मुसलसल आपकी हुक्म की तामील में लगा रहूंगा। फहुजिफल फियलु जी, तो तकदीर कलाम क्या थी, उलिबुलका इल्बाबैन, अब उससे लब्बैक कैसे बना, अब वो बयान करने लगे। कहते हैं फखुजिफल फेलु व उकीम अल मस्दरु मकामहु, तो उलिब्बु फेल को हजफ कर लिया गया, व उकीम अल मस्दरु मकामहु और मस्दर को उसका कायम मकाम कर दिया गया। जब मस्दर उसका कायम मकाम हो गया, अब फेल को आप जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि असल या नाइब में से एक वक्त में एक आ सकता है, तो जब मस्दर को उस फेल का कायम मकाम कर दिया, अब उस फेल को जिक्र नहीं कर सकते। तो कहते हैं फहुजिफल फियलु व उकीम अल मस्दरु मकामहु, तो फेल को हजफ कर लिया गया और उस मस्दर को उसका कायम मकाम कर दिया गया, वरुद्द इल सुलासी ये बिहस्फ जवाइदिही, और फिर उस मस्दर को लौटा दिया गया सुलासी मुजर्रद की तरफ, बिहस्फ जवाइदिही उसके जवाइद को हजफ करते हुए, सुम हुजिफा हर्फ उल जर्र मिन अल मफूल व उजीफ अल मस्दरु इलैही, फिर हर्फ जर को मफूल से हजफ कर लिया गया, व उजीफ अल मस्दरु इलैही और मस्दर की उस मफूल की तरफ इजाफत कर ली गई। तो क्या बन गया, क्या तरीका जिक्र किया, उलिब्बु लका इल्बाबैनी, उलिब्बु फेल को हजफ कर दिया गया, फिर लका इल्बाबैन रह गया, फिर इस इल्बाबैन को मुजर्रद की तरफ ले गए, मुजर्रद की तरफ ले गए, क्या बन गया, लब्बैना, हमजा शुरू से गिरा दिया और दरमियान से अलिफ, लब्बैना, तो क्या बन गया पूरा, लका लब्बैना, फिर इस हर्फ जर को हजफ कर लिया गया और ये काफ की तरफ लब्बैन की इजाफत कर दी गई, तो क्या बन गया, लब्बैका। तरीका समझ में आ गया। तो कहते हैं सुम हुज़िफ़ा हर्फुल जर्र मिनल मफ़ऊल व उज़ीफ़ अल मस्दरु इलैही, फिर हर्फ जर को हज़फ़ कर लिया गया मफ़ऊल से, व उज़ीफ़ अल मस्दरु इलैही और मस्दर की उसकी तरफ इजाफत कर दी गई। तो कहते हैं सुम हुज़िफ़ा हर्फुल जर्र मिनल मफ़ऊल व उज़ीफ़ अल मस्दरु इलैही, फिर हर्फ जर को मफ़ऊल से हज़फ़ कर दिया गया और मस्दर की उसकी तरफ इजाफत कर दी गई। व यजूज़ु अन यकूना मिन लब्बा बिल मकानी, और ये भी जायज है कि ये लब्बैक जो है ये लब्बा बिल मकान से हो, यानी उससे लिया गया हो, उलिब्बु बाबे इफ़ाल से ना हो बल्कि लब्बा बिल मकान यानी सुलासी मुजर्रद से ही हो। तो फिर इस सूरत में हस्फे जवाइद की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब सुलासी मुजर्रद से है तो जवाइद तो है ही नहीं। लब्बा बिल मकान का माना भी किसी जगह पर रहना, किसी जगह पर ठहरना, उस जगह पर करार पकड़ना, उस जगह पर जम जाना, और इसी तरह उलिब्बु बिल मकान भी इस्तेमाल होता है, उसका भी यही माना है। तो फिर इस सूरत में देखो लब्बा उसी उलिब्बु के माना में हुआ भाई। तो कहते हैं वही अजूजु अन यकूना मिन लब्बा बिल मकानी, और यह भी जायज है कि यह जो है लब्बैक जो है लब्बा बिल मकान से अखज किया गया हो। बिमाना अलब्बा, यह लब्बा बिल मकान किस माना में है, अलब्बा, उसमें भी उसका भी यही माना आता है। फला यकूनु महजूफ जवाइद, तो इस सूरत में यह महजूफ जवाइद नहीं होगा, यानी इसमें से जायद हजफ नहीं किए गए। वाला हादल कियासी सादैक, और इसी कियास पर सादैक भी है। आई उस ईदू का इसादन बाद इसादिन, देखो सादैक वही मफूल मुतलक है, तस्निया है और अपने अपने मफूल की तरफ मुजाफ हो रहा है। ये असादा युसईदु इसाद से है, असादा युसईदु का माना है किसी की मदद करना। देखो तकदीर इबारत निकाल रहे हैं साहिब जामी, आई उस ईदू का इसादन बाद इसादिन, कि मैं आपकी मदद करता हूं, इसादन बाद इसादिन, एक मदद के बाद दूसरी मदद, यानी कसरत के साथ बार बार मैं आपकी मदद करता हूं। माना समझ में आ गया? तो यह मुखातब मसलन किसी से कहता है सादैक, यानी मैं मुसलसल आपकी मदद करता रहता हूं, मैं मुसलसल आपकी मदद में लगा रहूंगा। तो यहां पर यह भी कसरत बयान करने के लिए है। देखिए भाई किताब पर सादैक आई उस ईदू का इसादन बाद इसादिन, देखो साहिब जामी तफसीर कर रहे हैं कि उस ईदू का मैं आपकी मदद करता हूं इसादन बाद इसादिन, एक मदद के बाद दूसरी मदद, यानी बार बार और कसरत के साथ। बिमाना उईनुका, देखो माना बयान कर दिए, उस ईदू का क्या माना, उईनुका मैं आपकी मदद करता हूं। इल्ला अन्ना असद यतअद्दा बिनफ्सिही बिखिलाफ अलब्बा फइन्नहु यतअद्दा बिल्लाम, यहां से फर्क बयान कर रहे हैं कि आप कहेंगे कि लब्बैका इसकी असल आपने हमें क्या बतलाई थी, उलिब्बु लका इल्बाबैनी, वहां आप लाम भी लेकर आए थे, और यहां आपने क्या कहा, उसईदु का इसादन बाद इसादिन, यहां आप लाम नहीं लाए, हालांकि यहां भी आपको क्या कहना चाहिए था, उसईदु लका कहना चाहिए था। तो साहिब जामी बतला रहे हैं कि भाई दोनों फेलों में फर्क है, अलब्बा युलिब्बु फेले लाजिम था, वो फेले लाजिम था, और फेले लाजिम जो है वो बराह रास्त मफूल को नसब नहीं दे सकता, तो फिर हुरूफ़े जार्रा का सहारा लिया जाता है। जैसे जहाबा का माना जाना, अब मैं जैद को इस जहाबा का मफूल बनाना चाहता हूं, लेकिन जहाबा जैदन मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि जहाबा फेले लाजिम है, यह मफूल को नसब दे ही नहीं सकता। तो फिर एक सूरत यह है कि इसको बाबे फाल में ले जाते हैं, अजहब तो जैदन, या हरफे जर का सहारा ले लिया जाता है, जहब तो भी जैदिन, जहब तो भी जैदिन का क्या माना, मैं जैद को ले गया। तो ये जैद ये जहाबा के लिए मफूल भी ही है, अलबत्ता ये मफूल भी ही गैर सरीह है। एक होता है मफूल भी ही सरीह, जिसको फेल नसब देता है, साफ लफ्जों में नसब का पता चलता है, और एक मफूल भी ही गैर सरीह है जिसमें फेल बराह रास्त अमल नहीं कर सकता, तो फिर हरफे जर की मदद ली जाती है, तो यह भी मफूल भी ही है भाई। तो कहते हैं देखो अलब्बा जो था वो फेले लाजिम था, वो मफूल को बराह रास्त नसब नहीं दे सकता था, तो वहां लाम का सहारा लिया गया, इसलिए उलिब्बु लका कहा गया। जबकि असादा युसईदु इसादन ये तो फेले मुतादी है, ये तो मफूल को बराह रास्त नसब दे सकता है, इसलिए यहां लाम वगैरह लाने की कोई हाजत नहीं, बल्कि उसईदु का काफ को बराह रास्त ये नसब दे रहा है, ये बराह रास्त उसके लिए मफूल भी ही है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं इल्ला अन्ना असादा यताअद्दा बिनफ्सिही, मगर यह बात है कि असादा फेल जो है यताअद्दा बिनफ्सिही वो खुद मुतअद्दी है बिखिलाफी अलब्बा, बखिलाफ अलब्बा के फइन्नहु यताअद्दा बिल्लामी, इसलिए क्योंकि वो तो लाम के जरिए मुतअद्दी होता है, लाम के बगैर मुतअद्दी नहीं, यानी वो बराह रास्त खुद नसब नहीं दे सकता फेल को। आगे देखिए भाई, कहते हैं अल मफूल बिही हुआ मा वका अय हुआ स्मु मा वका अलैहि फिअलुल फाइली जी। अब मफूल बिही आ गया, मफूल मुतलक की बहस मुकम्मल हुई भाई। अच्छा पहले मतन मतन देखिए भाई, कहते हैं अल मफूल बिही हुआ मा वका अलैहि फिअलुल फाइली, कि मफूल बिही जो है वो चीज है, यहां इसम का लफ्ज मुजाह महजूफ है, हुस्मु मा मफूल बिही जो है वो उस चीज का नाम है, वका अलैहि फिअलुल फाइली जिस पर फाइल का फेल वाक हो, ज़रबतु ज़ैदन, ये ज़ैदन क्या है मफूल भी ही है क्योंकि इस पर यह जरबतु का फेल वाके हुआ है। इबारत समझ में आ रही है भाई, कहते हैं अल मफूल भी ही हुआ मा वका अलैहि फिअलुल फाइली, मफूल भी ही वो नाम है उस चीज का जिस पर फाइल का फेल वाके हो भाई। तो जरबतु ज़ैदन, ये ज़ैदन मफूल भी ही है भाई। और फिर साहिबे जामी आपको बतलाएंगे कि वाके होने से वाके होना मुराद नहीं है बल्कि ताल्लुक मुराद है, कि फेल का उस चीज के साथ ताल्लुक हो भाई, फेल का उस चीज के साथ ताल्लुक हो भाई। इसलिए क्योंकि मसलन आप कहते हैं इया का नाबुदू, अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं, तो नाबुदू फेल है, इसके अंदर नहनु जमीर मरफू महलन फाइल, और माकबल में जो इया का आया यह है मफूल बिही, यह है मंसूब महलन, इया का नाबुदू, अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं। अब देखो यहां इया का मफूल बिही है और यहां इसे मुराद अल्लाह ताला की जात है, और यहां आपकी इबादत अल्लाह की जात पर वाकई नहीं होती, तो इबादत अल्लाह की जात पर वाकई नहीं होती बल्कि अल्लाह के लिए इबादत की जाती है। तो अगर वाकई होने का माना वाकई होने के कर लें तो फिर इस जैसी मिसालें तो निकल जाएंगी। इया का नाबुदू, इसके अंदर इया का बिल इतफाक मफूल भी ही है, लेकिन आपने क्या तारीफ की मफूल भी ही की, जिस पर फाइल का फेल वाकई हो, हालांकि अल्लाह ताला की जात पर तो इबादत का फेल वाकई नहीं होता भाई। तो इबादत का ताल्लुक है अल्लाह ताला से, या इबादत अल्लाह के लिए की जाती है, तो इसलिए साहिबे जामी आपको बतलाएंगे कि भाई वाके होने से मुराद है ताल्लुक भाई, के फेल का उसके साथ ताल्लुक हो भाई। और जाहिर सी बात है इया का नाबुदू, देखो ये इबादत का ताल्लुक है अल्लाह की जात से, कि अल्लाह के लिए यह इबादत की जा रही है। बात समझ में आ गई। या दूसरी मिसाल ले लें, दाउतुल्लाह, मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने अल्लाह से दुआ की। अब दाउतु के लिए लफ्ज अल्लाह आगे मफूल भी ही बन रहा है, लेकिन क्या हमारी दुआ अल्लाह की जात पर वाके होती है, या दुआ का अल्लाह से ताल्लुक है भाई? ताल्लुक है भाई, अल्लाह से दुआ की जा रही है, अल्लाह से मांगा जा रहा है। तो लिहाजा मालूम हुआ कि जो तारीफ के अंदर आया कि जिस पर फाइल का फेल वाकिया हो, वाकिया होने से क्या मुराद है, फेल का ताल्लुक मुराद है, कि फेल का उसके साथ ताल्लुक हो। और इस तकरीर से मा ज़रबतु ज़ैदन जैसा इश्काल भी खत्म हुआ। मा ज़रबतु ज़ैदन, मैंने जैद की पिटाई नहीं की। अब इस जुमले के अंदर यह ज़ैदन मंसूब है, और क्यों मंसूब है, मा ज़रबतु ज़ैदन क्योंकि यह मफूल भी ही है, तो ज़ैदन तो मफूल भी ही है, हालांकि आपने हमें क्या बताया मफूल भी ही किसे कहते हैं, जिस पर फाइल का फेल वाके हो, और यहां पर तो मुतकल्लिम क्या कह रहा है, मा ज़रबतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद की पिटाई नहीं की, मालूम हुआ उस पर ज़र्ब वाके नहीं है। तो साहिब जामी ने बतला दिया कि भाई वाके होने से मुराद फेल का ताल्लुक है, और फिर ताल्लुक होना आम है, चाहे फेल मुस्बत का ताल्लुक हो चाहे फेल मनफी का ताल्लुक हो, तो यह भी इसके अंदर दाखिल हो गया। और फिर यह भी याद रखना, ताल्लुक अव्वली मुराद है, क्या मुराद है, ताल्लुक अव्वली मुराद है, यानी उस ताल्लुक अव्वली का माना यह है कि उसके बगैर फेल का माना समझ में ही ना आए, यानी उसके बगैर फेल हो ही ना सके। जैसे ज़रबतु ज़ैदन, देखो जर्ब के लिए जैसे एक जारिब चाहिए एक मजरूब भी चाहिए, मजरूब के बगैर जर्ब हो ही नहीं सकती। तो जरब तो जैदन, ये जैदन क्या है, मफूल भी ही है, ये मजरूब है, इसके बगैर जर्ब के फेल का ताक्कुल ही नहीं हो सकता, इसके बगैर जर्ब का फेल पाया ही नहीं जा सकता। हां जरब तो जैदन, लफ्जों से आप जैद को बेशक हजफ कर दें और यूं कहें जरब तो, जरब तो मैंने पिटाई की, लेकिन जो भी सुनेगा इस जुमले को जरब तो, वो फौरन समझ जाएगा आपने पिटाई की है, तो कोई मजरूब भी होगा, बगैर मजरूब के इस जरब का ताकुल ही नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही? क्या आप मुझे कोई मिसाल दिखा सकते हैं जरब हो मजरूब कोई ना हो? नहीं, ऐसी कोई मिसाल नहीं, क्योंकि जर्ब बगैर मजरूब के हो ही नहीं सकती। इसी तरह क्या कोई ऐसी मिसाल मुझे दिखा सकते हैं कि शुर्ब हो लेकिन मशरूब कोई ना हो? नहीं भाई, शुर्ब बगैर मशरूब के हो ही नहीं सकता भाई। इसी तरह अकल हो छोटे काफ के साथ यानी खाना, अकल हो और माकूल यानी कोई खाई जाने वाली चीज जो है वो ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो मफूल के बगैर फेल का ताकुल ही नहीं हो सकता, हमारी समझ में ही नहीं आ सकता भाई। तो क्या माना किया कि वाकई होने से क्या मुराद है, फेल का उसके साथ ताल्लुक हो, और ताल्लुक कौन सा मुराद है, ताल्लुक अव्वली मुराद है, यानी जिसके बगैर फेल का ताकुल ना हो सके। लिहाजा हाल तमीज वगैरह मुस्तस्ना ये निकल गए, हाल जो फाइल या मफूल की हालत बयान करता है, तमीज जो किसी चीज से इबहाम को दूर करती है, और मुस्तस्ना जिसको माकबल के हुक्म से निकाला जाए, ये चीजें निकल गईं, क्योंकि इनका भी फेल के साथ ताल्लुक तो है, फेल इन सबको नसब तो देता है, लेकिन फेल का ताकुल इनके ताकुल पर मौकूफ नहीं है। हाल तमीज और मुस्तस्ना उसके बगैर भी फेल समझ में आता है। जरब तू जैदन, मैंने जैद की पिटाई की, देखो ना यहां पर हाल है ना मुस्तस्ना है ना तमीज है, कोई चीज भी नहीं है, और बात हमें पूरी समझ में आ रही है जरब तू जैदन के मुतकल्लिम ने जैद की पिटाई की है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं अल मफूल बिही हुआ मा वका अलैहि फिअलुल फाइली नहवु जरब तू जैदन, मफूल बिही उस चीज का नाम है जिस पर फाइल का फेल वाके हो, नहवु जरब तू जैदन जैसे जरब तू जैदन, तो ये जैदन मफूल बिही है भाई। अब देखिए शरा के साथ भाई, कहते हैं अल मफूल बिही हुआ मा वका आई हुआ स्मु मा वका, मफूल बिही जो है हुआ मा वका आई हुआ इस्म मा वका से पहले साहिब जामी ने इसम का लफ्ज महजूफ निकाल कर बतला दिया कि मफूल बिही मा वका नहीं है बल्कि मा वका का नाम है भाई, वो मा वका नहीं है बल्कि मा वका का नाम जो है उसको मफूल बिही कहते हैं। मसलन देखो भाई, मा वका वो तो कभी जात होगी और कभी माना होगा। जरब तो जैदन, मैंने किसकी पिटाई की, जैद की, तो खारिज में और वाके के अंदर मैंने जैद की पिटाई की, तो क्या मफूल बिही वो जैद की जात है या जरब तू जैदन के अंदर ये जो जैदन लफ्ज है ये मफूल बिही है? ये जो लफ्ज है जरब तू जैदन, ये जो जैदन लफ्ज है ये मफूल बिही है, वो जो खारिज में जैद की जात है वो मफूल बिही नहीं है भाई। और इसी तरह कभी वो मफूल बिही माना होगा भाई, मफूल बिही मसलन अहदस्तु जरबा, मैंने उस जरब को वजूद दिया, तो अहदस्तु फेल व फाइल और अजरबा मफूल बिही है, और जरब ये मफूल बिही बन रहा है, हालांकि जरब तो एक माना का नाम है, ये मस्तर है भाई, मैंने बताया था मस्तर का खारिज में कोई वजूद नहीं, ये किसी की सिफत होती है, ये एक मानवी चीज है, खारिज में यह हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि इसका अपना अलग वजूद ही नहीं। तो अहदस्तु जरबा, यह जरबन क्या है, मफूल बिही है, और यह जरब मस्तर है माना है। तो इस मिसाल में देखो जरब जो मफूल बिही है वो तो एक माना है भाई, तवज्जो है, तो वो जो अहदस्तु जरबा तो वो जो माना है वो मफूल बिही नहीं है, बल्कि ये जो लफ्ज जरब जिसके साथ इसको मैंने जिक्र किया ये जरब मफूल बिही है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी मा वका से पहले इसम का लफ्ज मुजाह महजूफ निकालेंगे कि मफूल मुतलक वो मा वका का इसम है भाई, तो ये लफ्ज की कबील से है। चुनाचे इसीलिए नहवी इसके बारे में बहस करता है, क्योंकि नहवी अरबी अल्फाज के बारे में बहस करता है, तो जब ये इसम है तो ये भी लफ्ज हुआ, तो इसके बारे में इसलिए नहवी बहस करता है। तो कहते हैं अल मफूल बिही हुआ मा वका आई हुस्म मा वका, तो मफूल बिही नाम है उस चीज का, वका अलैहि फिअलुल फाइली जिस पर फाइल का फेल वाके हो, वलम यज़कुरी लिस्मा भाई साहिब जामी ने इसम का लफ्ज मुजाफ महजूफ निकाला, तो साहिब काफिया ने क्यों नहीं जिक्र किया, अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं कि भाई साहिब काफिया ने मफूल मुतलक के अंदर इसम का लफ्ज जिक्र कर दिया था, तो लिहाजा इसलिए उसी पर इक्तिफा करते हुए दोबारा उसको जिक्र नहीं किया कि पढ़ने वाला खुद समझ जाएगा। तो कहते हैं वलम यज़कुरिल इस्मा, और साहिब काफिया ने इसम को जिक्र नहीं फरमाया, इक्तिफा अन बिमा सबका फिल मफूल मुतलकी, इक्तिफा करते हुए उस पर जो माकबल में गुजर गया था मफूल मुतलक के अंदर, वल मुराद बि वुकूउ फिअल फाइल अलैहि ताल्लुकुहु बिही बिला वासितति हर्फिल जर्री, और मुराद जो है फाइल के फेल के वाके होने से, अलैहि उस मफूल बिही पर। तर्जमा समझ में आ रहा है, वल मुराद बि वुकूउ फिअल फाइल अलैहि, और फाइल के फेल के उस मफूल बिही पर वाके होने से मुराद जो है ताल्लुकुहु बिही, वो उस फेल का ताल्लुक है उस मफूल बिही के साथ, के फेल का वाके होने से वाके होना मुराद नहीं है बल्कि ताल्लुक मुराद है, बिला वासितति हर्फिल जर्री, और यह ताल्लुक बगैर वास्ता हर्फे जर के हो, यानी दरमियान में हर्फे जर नहीं आना चाहिए। तो देखो एक वो लफ्ज है जिसके अंदर फेल बराह रास्त अमल करता है और उसको नसब देता है, जैसे जरबतु जैदन, और एक वो है जिसके अंदर फेल अमल करता है बवास्ता हर्फे जर के, जैसे मररतु बी जैदिन। लेकिन ये जो बगैर हर्फे जर के वास्ते के अंदर जिसके अंदर फेल अमल कर रहा है, यानी जरबतु जैदन, इसके बारे में नहवी कहते हैं कि इस जैदन पर यह जरब वाकिअ है, जबकि मररतु बी जैदिन नहवी हजरात ये नहीं कहते हैं कि यह मुरूर का फेल इस जैद पर वाकिअ है, बल्कि इसके लिए वो लफ्ज बोलते हैं कि यह मुरूर का ताल्लुक है जैद के साथ, यह मुरूर मुतलब्बिस है जैद के साथ। फर्क समझ में आया? इन्होंने क्या कहा, वल मुरादु बिवुकूउ फिअलिल फाइल अलैहि, के मफूल बिही पर फाइल के फेल के वाके होने से मुराद जो है ताल्लुकुहु बिही, फेल का उस मफूल बिही के साथ ताल्लुक हो, बिला वासितति हर्फिल जर्री, बगैर हर्फ जर के वासिते के, फइन्नहुम यकूलून फी जरबतु जैदन, इसलिए क्योंकि नहवी हजरात कहते हैं जरबतु जैदन के बारे में कि इन जरब वाकिउन अला जैदिन, कि यह जरब जैद पर वाकिअ है, इसलिए क्योंकि जरबतु ने जैदन में बराह रास्त अमल किया है, दरमियान में कोई हर्फ जर नहीं। वला यकूलून फी मररतु बिज़ैदिन, और मररतु बिज़ैदिन में वो ये नहीं कहते कि इन्नल मुरूरा वाकिउन अलैहि, के मुरूर जैद पर वाकि है, बल मुतलब्बिसुन बिही, बल्कि कहते हैं कि वहां पर मुरूर मुतलब्बिस बिज़ैद है, जैद के साथ जुड़ा हुआ है, जैद के साथ ताल्लुक है उसका। फर्क समझ में आया? मफूल बिही जो होता है जिसको फेल नसब देता है उसके लिए नहवी हजरात क्या लफ्ज बोलते हैं कि फेल उस पर वाके है, और जिसके अंदर फेल अमल करता है बवास्ते हर्फे जर के उसके बारे में नहवी ये नहीं कहते कि इस पर फेल वाके है, बल्कि क्या कहते हैं, फेल का इसके साथ ताल्लुक है। तो तारीफ में जो कहा ना अल मफूल बिही हुआ मा वका अलैहि फिअलुल फाइली, जिस पर फाइल का फेल वाकिअ हो, तो वो जो मजरूर बहरफे जर है वो निकल गया, क्योंकि उसके बारे में नहवी ये नहीं कहते कि फेल उस पर वाके है, बल्कि क्या कहते हैं कि फेल उसके साथ मुतलब्बिस है। मुतलब्बिस का क्या माना, मुतअल्लिक है, जुड़ा हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो कहते हैं फखरज बिहिल मफाइल सलासतुल बाकियतु, तो इस कैद की वजह से, ये जो वाकआ की कैद लगाई ना, इस कैद की वजह से बाकी के तीन मफूल निकल गए। فإنه لا يقال في واحد منها, कि इसलिए क्योंकि उनमें से किसी के बारे में भी यह नहीं कहा जाता कि इन الفعل وقع عليه, के फेल उस पर वाके है, बल فيه او له او معه, बल्कि उसके लिए कहते हैं कि फेल उस में वाके है या उसके लिए वाके है। ये वका को सबके साथ जोड़ दें कि उन बाकियों के बारे में वकआ अलै नहीं कहते कि फेल उस पर वाके है, बल फी ही, बल्कि क्या कहते हैं, वकआ फी ही, औ लहू या वकआ लहू कहते हैं, औ माहू या वकआ माहू कहते हैं। भाई देखो भाई, ये जो मफूल बिही है ना, इस पर फाइल का फेल वाके होता है। जरब तो जैदन, ये मेरी जरब किस पर वाके है, जैद पर वाके है, जबकि बाकी के जो तीन मफूल हैं यानी मफूल फी, मफूल लहू और मफूल माहू, उनमें ये नहीं कहते कि फेल उन पर वाके है, उन पर वाके ये नहीं कहते, बल्कि उनमें वाके है या उनके लिए वाके है या उनके साथ वाके है। मसलन मसलन जरब तो जैदन यौमल जुमाती, मैंने जैद की पिटाई की किस दिन, जुमे वाले दिन, तो ये जो यौमल जुमा इसको भी फेल ने नसब दिया है, लेकिन ये नहीं कहते कि जरबतु का फेल जुमे के दिन पर वाके है, बल्कि क्या कहते हैं कि जरबतु का फेल जुमे के दिन में वाके है, आई फी ही, उसके लिए मफूल फी ही का लफ्ज बोलते हैं कि इसके अंदर फेल किया गया है। और इसी तरह दूसरी मिसाल ले लें, जैसे मफूल लहू है जरबतु जैदन तादीबन, ये तादीबन को भी जरबतु ने नसब दिया, लेकिन नहवी हजरात ये नहीं कहते कि ये जरबतु का फेल तादीबन पर वाके है, बल्कि यूं कहते हैं कि ये मफूल लहू है, यानी फेल जो है वाके हुआ है लहू इसकी वजह से। और मफूल माहू जो है, मसलन जा अनी जैदन व अमरन, जैद आया अमर के साथ, यह अमरन मंसूब है क्योंकि यह वाव बमाने माह के बाद है, यह मफूल माहू है। मालूम हुआ जैद का आना किसके साथ है, अमर के साथ, यानी दोनों ने आने का फेल इकट्ठा किया है। तो यह जो अमरन है इसके बारे में यह नहीं कहते कि इस पर फाइल का फेल वाकिया है, बल्कि क्या कहते हैं, फाइल का फेल वाका माहू, इसके साथ वाके हुआ है, यह मफूल माहू है। बात समझ में आ गई। तो बाकी के तीन मफाइल जो हैं उनके लिए फेल उन पर वाके है ये नहीं कहते, बल्कि उसमें कहते हैं वका फी ही, इसके अंदर फेल वाके हुआ है, यानी ये मफूल फी है। और या कहते हैं वका लहू, इसकी वजह से फेल वाके हुआ है, यानी ये मफूल लहू है। या वका माहू कहते हैं कि इसके साथ फेल वाके हुआ है, यानी मफूल माहू है। तो लिहाजा जब कहा वका अलैहि, तवज्जो है किताब में, जब वका अलैहि फ़िअलुल फ़ाइल कहा कि फाइल का उस पर फेल वाके हो, तो ये तीनों मफूल निकल गए, मफूल फी भी निकल गया, मफूल लहू भी निकल गया और मफूल माहू भी निकल गया। फिर देखिए तर्जमा कहते हैं फखराज बिहिल मफाइल सलासतुल बाकियतु, तो बाकी तीन मफूल निकल गए, फइन्नहु ला युकालु फी वाहिदिम मिन्हा, इसलिए कि उनमें से किसी एक में भी यह नहीं कहा जाता कि नलफ़िअल वक़ा अलैहि, के फेल उस पर वाके हुआ है, बल फीहि औ लहू औ माहू, बल्कि उसमें क्या कहते हैं कि फेल जो है वक़ा फीहि, उसमें वाके हुआ है, औ लहू अई वका लहू, फेल उसकी वजह से वाके हुआ है, औ माहू अई वका माहू, फेल उसके साथ वाके हुआ है। वल मफूल उल मुतलक बिमा युफ़हम मिन मुगायरतिहि लिफ़िअलिल फ़ाइलि, और कहते हैं मफूल मुतलक भी निकल गया। ये अल मफूल उल मुतलक, इसका अतफ है पीछे अल मफाइलु सलासा जो आया था, तो फखरा जब हिल मफाइल सलासतु, तो इस कैद की वजह से मफाइल सलासा भी निकल गए, वल मफूल उल मुतलक, और मफूल मुतलक भी निकल गया। भाई मफूल मुतलक कैसे निकल गया, कहते हैं इसलिए क्योंकि जब यह कहा फाइल का फेल उस पर वाकया होता है, फाइल का फेल, इससे पता चल गया फेल और चीज है और जिस पर वाके हो रहा है वह और चीज है, जिस पर फाइल का फेल वाके हो रहा है, भाई एक चीज है जो वाके हो रही है और एक वो चीज है जिस पर वाके हो रही है, मालूम है दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। तो जब कहा कि मफूल भी ही वो है जिस पर फाइल का फेल वाके हो, मालूम है फेल अलग चीज है और जिस पर वाके है यानी मफूल भी ही वो अलग चीज है, जब ये पता चल गया तो पता चला कि यह मफूल भी ही मफूल मुतलक भी नहीं है, क्योंकि मफूल मुतलक वो तो ऐन फेल को कहते हैं, जरब तो जरबन, मैंने कौन सा फेल किया, जर्ब वाला, तो ये जो मफूल मुतलक होता है ये तो ऐन फेल का नाम ही है भाई, और फेल की तारीफ में इसकी कैद भी आई थी। मफूल मुतलक किसे कहते हैं, हुस्मु मा फालहु फाइलु फिअलिन मज़कूरिन बिमानाहु, वो नाम है जिसको किया हो फेल मज़कूर के फाइल ने और वो फेल उसके हम माना हो। देखो मफूल मुतलक वो तो ऐन फेल का नाम है, तवज्जो है, मफूल मुतलक जाराबा जैदन, जैद ने कौन सा फेल किया, जर्ब वाला, तो वही आप मफूल मुतलक आगे बना देते हैं, जाराबा जैदन जरबन, शरीबा अमरुन, अमर ने कौन सा काम किया, शुर वाला, तो उसी को आप आगे मफूल मुतलक बना देते हैं, शरीबा अमरुन शुरबन। तो मफूल मुतलक वो तो ऐन फेल होता है, लेकिन जब यहां कह दिया कि फेल उस पर वाके होता है तो पता चला मफूल भी ही और चीज है, मफूल मुतलक और चीज है, क्योंकि मफूल मुतलक वो तो ऐन फेल का नाम है, उस पर तो फाइल का फेल वाके नहीं होता। तो कहते हैं वल मफूल उल मुतलक, और मफूल मुतलक भी निकल गया बीमा युफ हम, वो जो समझ में आता है, बीमा युफ हम, वो जो मफहूम हो रहा है, भाई क्या मफहूम हो रहा है, आगे मीन के जरिए बयान है, मुगायरती ही लिफेल फाइली, यानी कि उसका फाइल के फेल से मुगायर होना। कहते हैं वल मफूल उल मुतलक, और मफूल मुतलक भी निकल गया बीमा युफहम, उसकी वजह से जो मफहूम हो रहा है, भाई क्या मफहूम हो रहा है, अभी तक बात वाजे नहीं हुई थी तो आगे मीन के जरिए उसका बयान कर दिया। मैंने आपको बतलाया था कि इस तरह की इबारत कसरत के साथ आती है, एक चीज को जिक्र किया जाता है मौसूल सिला के साथ और फिर भी माना वाजे नहीं होता तो आगे मीन के साथ उसका बयान कर दिया जाता है। तो क्या कहा कि मफूल मुतलक भी निकल गया बीमा युफहम, उस चीज की वजह से जो वो जो मफहूम हो रहा है, वो जो बात समझ में आ रही है, भाई वो क्या चीज है, अभी भी बात पूरी वाजे नहीं, तो अब मीन के साथ बयान कर दिया, मीन मुगायरती ही लिफेल फाइली, यानी कि यह मफूल बिही का फेल फाइल से मुगायर होना, यह मफूल बिही का, भाई जब मफूल बिही पर फाइल का फेल वाक है, मालूम हुआ मफूल बिही फेल फाइल से मुगायर चीज है, अलग चीज है, फेल और है मफूल बिही, और तो जब ये फेल फाइल से मुगायर चीज है मालूम हो फिर ये मफूल मुतलक नहीं है, मफूल मुतलक तो ऐन फेल का नाम होता है। तो कहते हैं बीमा युफहमु मिन मुगायरतिहि लिफ़िलिल फ़ाइली, वो जो मफहूम हो रहा है यानी मफूल बिही का फेल फाइल से मुगायर होना, फ़इन्नल मफूल अल मुतलक ऐन फ़िलिहि, इसलिए क्योंकि मफूल मुतलक जो है वो तो ऐन फ़िल फ़ाइल है, वो तो ऐन फेल फाइल है, ये वो तो उससे कोई मुगायर नहीं है। चलिए बस यहां तक बात समझ में आ गई, चलिए बस भाई हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।